नमस्ते, मैं आराव हूँ। नाइन नार ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। द कमिंग वेव, मुस्तफा सुलेमान और माइकल भास्कर की लिखी प्रौद्योगिकी, राजनीति और सामाजिक भविष्य पर केंद्रित विश्लेषणात्मक पुस्तक है। डीप माइंड के सह संस्थापक रहे सुलेमान का मुख्य तर्क है कि उन्नत AI और सिंथेटिक बायोलॉजी जैसी तकनीकें मानव क्षमता, उत्पादकता और वैज्ञानिक खोज को असाधारण रूप से बढ़ा सकती है, लेकिन उनकी गति, सुलभता और व्यापक उपयोगिता उन्हें पुराने आविष्कारों से अलग बनाती है। ये उपकरण सरकारों, कंपनियों और छोटे समूहों के बीच शक्ति का संतुलन बदल सकते हैं, गलत सूचना, साइबर जोखिम, जैविक दुरुपयोग और व्यापक निगरानी को बढ़ा सकते हैं। पुस्तक का केंद्रीय विचार कंटेनमेंट प्रॉब्लम है, अर्थात ऐसी शक्तिशाली तकनीकों को उपयोगी बनाए रखते हुए उनके विनाशकारी प्रयोग और अनियंत्रित प्रसार को कैसे रोका जाए। सुलेमान ना तो तकनीकी प्रगति को रोकने का सरल आग्रह करते हैं, ना ही उसे अपने आप कल्याणकारी मानते हैं। उनका उद्देश्य उस कठिन राजनीतिक और संस्थागत प्रश्न को स्पष्ट करना है, जिसमें समाज को समृद्धि, सुरक्षा, स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच संतुलन बनाना होगा। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, कंटेनमेंट प्रॉब्लम, तकनीकी शक्ति को नियंत्रित रखने की केंद्रीय चुनौती। पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण ढांचा कंटेनमेंट प्रॉब्लम है। सुलेमान के अनुसार, इतिहास में तकनीक की मुख्य समस्या अक्सर उसे बनाने, फैलाने और उपयोगी बनाने की थी। अब चुनौती उलट रही है। AI और सिंथेटिक बायोलॉजी जैसे उपकरण विकसित होने के बाद तेजी से कॉपी, संशोधित और नए उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उनके निर्माताओं का नियंत्रण जल्द सीमित हो जाता है, क्योंकि वास्तविक दुनिया में उपयोगकर्ता, प्रतिस्पर्धी, बाजार और राज्य इन्हें अलग अलग दिशाओं में ले जाते हैं। इसे केवल किसी एक कंपनी की सुरक्षा नीति से हल नहीं किया जा सकता। सुलेमान कंटेनमेंट को कई परतों वाली व्यवस्था के रूप में रखते हैं, जिसमें तकनीकी सुरक्षा, स्वतंत्र ऑडिट, नियम, पारदर्शिता, दायित्व और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल है। इस विचार का उद्देश्य हर जोखिम को समाप्त करना नहीं, बल्कि क्षमता के प्रसार और उसके दुरुपयोग के बीच सार्थक अवरोध बनाना है। कठिनाई यह है कि लाभ की प्रतिस्पर्धा सरकारों और कंपनियों को तेजी से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, जबकि सावधानी का लाभ अक्सर साझा होता है और उसकी लागत किसी एक पक्ष को उठानी पड़ती है। इसलिए पुस्तक कंटेनमेंट को केवल इंजीनियरिंग का नहीं, सामूहिक राजनीतिक समन्वय का प्रश्न मानती है। दूसरा, AI और सिंथेटिक बायोलॉजी का मेल। अभूतपूर्व क्षमता के साथ व्यापक जोखिम, सुलेमान आने वाली लहर के दो प्रमुख आधार उन्नत AI और सिंथेटिक बायोलॉजी को मानते हैं। AI ज्ञान आधारित कामों, विश्लेषण, डिजाइन, संचार और स्वचालन में क्षमता बढ़ा सकती है। सिंथेटिक बायोलॉजी जीवन के जैविक कोड को पढ़ने, संपादित करने और लिखने की बढ़ती क्षमता से जुड़ी है। अलग अलग भी ये क्षेत्र अत्यंत प्रभावशाली है, पर उनका संयोजन जोखिम और अवसर दोनों बढ़ाता है। AI वैज्ञानिक खोज, दवा निर्माण और जैविक डिजाइन को तेज कर सकती है, जिससे उपचार, कृषि और पर्यावरणीय समाधान आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही वही क्षमता हानिकारक जैविक एजेंटों के डिजाइन या प्रयोग की बाधाएं कम कर सकती है। पुस्तक का बिंदु यह नहीं कि हर जैविक नवाचार खतरनाक है। तर्क यह है कि जब शक्तिशाली सामान्य प्रयोजन वाले उपकरण सस्ते, तेज और अधिक सुलभ बनते हैं, तो उच्च क्षमता वाले दुरुपयोग के लिए आवश्यक विशेषज्ञता और संसाधन घट सकते हैं। इसलिए सुरक्षा को केवल अंतिम चरण की जांच नहीं माना जा सकता। अनुसंधान, मॉडल विकास, प्रयोगशाला प्रक्रियाओं और वितरण के स्तर पर जोखिम आकलन आवश्यक है। यह दृष्टि लाभकारी विज्ञान और जैव सुरक्षा को एक दूसरे का विरोधी नहीं, बल्कि साथ चलने वाली जिम्मेदारियां मानती है। तीसरा, चार गुण, असममिति, तीव्र गति, बहुउपयोगिता और स्वायत्तता। पुस्तक बताती है कि नई तकनीकी लहर को कठिन बनाने वाले चार जुड़े हुए गुण हैं: असममिति, अत्यधिक गति, सामान्य प्रयोजन और बढ़ती स्वायत्तता। असममिति का अर्थ है कि छोटे समूह, कंपनियां या कभी कभी व्यक्ति भी असाधारण प्रभाव डालने की क्षमता पा सकते हैं। पहले जिन कार्यों के लिए विशाल संस्थान, पूंजी या सैन्य ढांचा चाहिए था, उनमें से कुछ के लिए प्रवेश बाधाएं घट रही हैं। दूसरा गुण, गति है। AI प्रणालियां और जैविक तकनीकें तेज पुनरावृत्ति, डेटा और कंप्यूटिंग से लगातार सुधरती है। नीति, कानून और सामाजिक समझ अक्सर इस गति से पीछे रह जाते हैं। तीसरा गुण, बहुउपयोगिता है। एक ही AI मॉडल शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार, प्रचार, साइबर सुरक्षा या साइबर हमलों में प्रयुक्त हो सकता है। इसलिए किसी उपकरण को केवल उसके घोषित मूल उपयोग से नियंत्रित करना पर्याप्त नहीं है। चौथा गुण, स्वायत्तता है। जब प्रणालियां कम मानवीय हस्तक्षेप के साथ लक्ष्य तय करने, निर्णय लेने या कार्य करने लगती हैं, तो निगरानी और जवाबदेही जटिल हो जाती है। इन गुणों का संयुक्त प्रभाव महत्वपूर्ण है। तेज बहुउपयोगी और स्वायत्त उपकरण यदि व्यापक रूप से उपलब्ध हो तो गलत निर्णय या जानबूझकर किया गया दुरुपयोग बहुत दूर तक फैल सकता है। इसी कारण सुलेमान रोकथाम, परीक्षण और नियंत्रण को तैनाती से पहले की प्राथमिकता मानते हैं। चौथा, राष्ट्र राज्य पर दबाव। शक्ति का केंद्रीकरण और निगरानी का दुविधापूर्ण विकल्प। द कमिंग वेव का राजनीतिक पक्ष इस प्रश्न पर केंद्रित है कि क्या आधुनिक राष्ट्र राज्य इतनी तेजी से बदलती तकनीकी शक्ति को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकते। हाँ, राज्य नागरिकों को सुरक्षा, कानून, अधिकार और सार्वजनिक सेवाएं देने के लिए सीमाओं, संस्थाओं और वैध बल प्रयोग पर निर्भर करते हैं, लेकिन डिजिटल नेटवर्क और सुलभ तकनीकें सीमाओं के पार काम करती हैं। बड़ी तकनीकी कंपनियां कंप्यूटिंग डेटा, प्रतिभा और बुनियादी ढांचे का ऐसा केंद्रीकरण कर सकती है जो कई राज्यों की क्षमता से प्रतिस्पर्धा करे। दूसरी ओर छोटे और दुष्ट समूह भी अपेक्षाकृत कम संसाधनों से बड़ी क्षति पहुंचाने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। यह दोहरा दबाव है, ऊपर से कॉरपोरेट केंद्रीकरण और नीचे से विकेंद्रित खतरे। इसके जवाब में राज्य व्यापक निगरानी, पहचान नियंत्रण और कठोर प्रतिबंधों की ओर जा सकते हैं, पर यही उपाय नागरिक स्वतंत्रता, गोपनीयता और लोकतांत्रिक जवाबदेही को कमजोर कर सकते हैं। सुलेमान इसी को विनाश और डिस्टोपिया के बीच संकीर्ण रास्ता कहते हैं। पुस्तक किसी आसान संतुलन का दावा नहीं करती, वह दिखाती है कि सुरक्षा के नाम पर असीमित नियंत्रण भी उतना ही गंभीर सामाजिक परिणाम पैदा कर सकता है जितना अनियंत्रित तकनीकी प्रसार। इसलिए वैध नियमों के साथ सार्वजनिक निरीक्षण, सीमित अधिकार और संस्थागत जवाबदेही जरूरी है। अंत में कंटेनमेंट की व्यावहारिक परतें, सुरक्षा मानक, जवाबदेही और वैश्विक सहयोग सुलेमान का उत्तर केवल चेतावनी नहीं है, वे कंटेनमेंट के लिए परस्पर सहायक उपायों की दिशा बताते हैं। पहला स्तर तकनीकी है, जिसमें सुरक्षित डिजाइन, क्षमताओं का कठोर परीक्षण, जोखिमपूर्ण उपयोगों पर सीमाएं और तैनाती से पहले मूल्यांकन शामिल हैं। दूसरा स्तर संस्थागत है, कंपनियों को यह दिखाना चाहिए कि उनके उत्पाद किस जोखिम स्तर तक सक्षम है, किन सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन हुआ है और हानि होने पर जिम्मेदारी किसकी होगी। स्वतंत्र ऑडिट तथा पारदर्शिता इसीलिए महत्वपूर्ण है कि केवल स्वैच्छिक आत्म मूल्यांकन हितों के टकराव से मुक्त नहीं होता। तीसरा स्तर कानूनी और आर्थिक है, नियमों को इतना सक्षम होना चाहिए कि वे उच्च जोखिम वाले विकास और वितरण को नियंत्रित करें, पर इतने अव्यावहारिक नहीं कि जिम्मेदार शोध केवल कम जवाबदेह स्थानों पर चला जाए। चौथा स्तर अंतर्राष्ट्रीय है, AI, जैविक सामग्री, कंप्यूटिंग और साइबर गतिविधियां राष्ट्रीय सीमाओं में सीमित नहीं रहती, इसलिए साझा मानक, सूचना विनिमय और सहयोगी व्यवस्थाएं आवश्यक हैं। पुस्तक इस व्यवस्था की राजनीतिक कठिनाइयों को स्वीकार करती है, विशेषकर देशों की प्रतिस्पर्धा और विश्वास की कमी को। फिर भी उसका मूल निष्कर्ष है कि केवल बाजार की गति या अलग अलग राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं पर्याप्त नहीं होंगी, तकनीक की शक्ति के अनुरूप सुरक्षा और शासन की क्षमता विकसित करनी होगी। निष्कर्ष में यह पुस्तक नीति निर्माताओं, तकनीकी क्षेत्र के पेशेवरों, उद्यमियों, निवेशकों, शिक्षकों और उन पाठकों के लिए उपयोगी है जो AI को केवल उत्पादकता के उपकरण के रूप में नहीं, बल्कि शक्ति और शासन के प्रश्न के रूप में समझना चाहते हैं। सामान्य पाठक को भी इससे यह स्पष्ट ढांचा मिलता है कि AI, सिंथेटिक बायोलॉजी और अन्य उभरती क्षमताओं पर चर्चा केवल भविष्यवाणी या भय की चर्चा नहीं है, इसमें संस्थाओं, अधिकारों, सुरक्षा उपायों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से जुड़े ठोस निर्णय शामिल है। पुस्तक का व्यावहारिक लाभ यह है कि यह जोखिम को तकनीकी खराबी तक सीमित नहीं करती, यह पूछती है कि किसी क्षमता तक किसकी पहुंच होगी, उसके उपयोग का निरीक्षण कौन करेगा, नुकसान की स्थिति में जवाबदेह कौन होगा और सुरक्षा के नाम पर राज्य की शक्ति की सीमा क्या होगी। समान विषय की अनेक पुस्तकों की तुलना में इसका अलग पक्ष सुलेमान का उद्योग के भीतर का अनुभव और कंटेनमेंट प्रॉब्लम पर उसका संगठित जोर है। यह न तो AI को अनिवार्य विनाश मानती है, न असीम प्रगति का स्वतः स्रोत। इसकी सीमा भी स्पष्ट है, क्योंकि वैश्विक सहयोग और अनुपालन को लागू करना अत्यंत कठिन है, फिर भी यही ईमानदार तनाव इसे उपयोगी बनाता है। द कमिंग वेव पाठक को तैयार उत्तर नहीं देती, बल्कि उस केंद्रीय दुविधा को गंभीरता से समझने का ढांचा देती है, जिसमें शक्तिशाली तकनीक के लाभों को बचाते हुए समाज को उसके अनियंत्रित परिणामों से सुरक्षित रखना है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं मुस्तफा सुलेमान, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।